ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமிஜி ஸ்ரீ தத்ரூபானந்த்ஜி மகாராஜ். தேங்க் யூ. ஓம் நம சிவாய.
சாட்சாத் குருதே, வஹ ஜோ साक्षात्कार करता है. कब? प्रबोध समय. प्रबोध समय. देखो, हमारे जो तत्वज्ञान समझने वाले हैं वेदांत के विद्यार्थी, उसके लिए दो ही चीज का अति महत्व है, एक बोध और एक बाध. संसार का बाध नहीं होगा तो बोध नहीं होगा, और बोध होते ही बाध अपने आप घटित होगा, आपको कुछ नहीं करना है. बोध अपने बोध होते ही बाध अपने आप घटित होगा. इसलिए उपनिषदों ने घोषणा गर्जना करके कहा है कि भाई आत्मा विवृणते तनुस्वाम, आत्मा स्वयं ही अपने आप को प्रकट करेगा, आपके भीतर प्रकट करेगा, आपको कुछ नहीं करना है. दे ऑल्सो सर्व दोज हू वेट एंड वॉच. तो एक अवस्था में आकर रुकना है मात्र, कुछ नहीं करना है. क्यों रुकना है? दोज हू वेट एंड वॉच, क्यों? उसका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए रुकना है, इंतजार करना है, फॉर ग्रेस ऑफ लॉर्ड ऑल माइटी. मगर उसके पहले क्या करना है? अधिकारित्व प्राप्त कर लेना है साक्षात्कार का. तो मैं समझाता हूं धीरे धीरे. यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय. प्रबोध समय मतलब वो ज्ञान काल जिसको कहते हैं प्रबोध. जाग जाते हैं, वो जागने का समय क्या है? प्रबोध समय क्या है, ये समझाता हूं. अर्थ ले लो पहले. स्वात्मानम एव अद्वयम. वो किसका साक्षात्कार करता है? स्व आत्मानम, अपने आत्मा का ही साक्षात्कार करता है. कैसे करता है? कि वो आत्मा अद्वितीय है, उसमें ना कोई भेद है, ना कोई भय है, ना कोई भंग है. ऐसे अपने आत्मा का वो साक्षात्कार करता है. कब करता है? प्रबोध समय. यस साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मान मेवाद्वयम. तो देखिए, अब ये लाइन को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे. प्रबोध समय याने क्या? मैं आपको पूछता हूं, प्रबोध समय याने क्या? कौन सा समय? तो ज्ञान दशा के अंदर जब हम उपस्थित होते हैं उसको कहते हैं प्रबोध समय. समझिए, हमारे पास तो सामर्थ्य नहीं है कि हम वो ज्ञान दशा के अंदर खड़े हो सके हैं. ठीक है, मत घबराइए. दृश्य प्रपंच का बात तो कर सकते हो ना. किसका? दृश्य प्रपंच का. प्रपंच क्यों कहता हूं? जो चीज पांच से जुड़ी हुई, पंचक से बनी है, उसी को प्रपंच कहा जाता है. तो सबसे पहले पंच महाभूत, तो पंच महाभूत से ये पिंड भी बना और ब्रह्मांड भी बना. अच्छा, तो पिंड बना, बोले हां. पांच महाभूत, बोले हां. इसके हाथ की उंगुलियां पांच, पैर की उंगुलियां पांच, ज्ञान इंद्रियां पांच, कर्म इंद्रियां पांच. ज्ञान इंद्रिय के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्या है? पांच. अब मैं ज्यादा नहीं गिनाता हूं, समय नहीं. सब पांच 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 पांच, और पांच 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 को मिला के जो बना उसका नाम है नहीं परपंच. मगर जो परपंच करता है, जो प्रपंच करता है, उसका नाम है सरपंच. इलेक्शन तो अभी आ रहा है, ज्यादा प्रपंच करेगा बनेगा सरपंच. तो मैं कहना यह चाहता हूं, देखिए कि अगर आप ज्ञान दशा में खड़े नहीं हो सकते हो तो ये प्रपंच जो है ना, उसको बात तो कर सकते हो ना. हां मैं कर सकता हूं. हां तो उसका नाम है प्रबोध समय. नहीं, मेरे में तो वो भी सामर्थ्य नहीं है. तो अविद्या का अंत तो ला सकते हो ना. बोले हां ये बात थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है. तो चलो अविद्या का अंत कर दो, वो भी प्रबोध समय होगा. दृश्य प्रपंच का बात करो तो भी प्रबोध समय कहा जाएगा. ज्ञान दशा में खड़े हो जाइए, वो भी प्रबोध. स्वामी इसमें इसमें कुछ नहीं कर सकता. अच्छा, मत घबरा. एक काम कर, सरल बताता हूं. जो अनात्मा है ना, उसका तादात्म्य तो तोड़ दे यार. ये तो दूसरे ने तेरे लिए मुसीबत खड़ी नहीं की, तूने की है ना. अनात्मा के साथ जड़ के साथ, साकार के साथ, जन्मी हुई चीज के साथ, भोग पदार्थों के साथ तादात्म्य तो तूने किया है। अरे सबसे पहले तेरे शरीर के साथ तादात्म्य किया, हम देह तो तादात्म्य तोड़ दे। अगर स्वामी जी मैं तोड़ दूं बस तो प्रबोध समय तेरे लिए जीवन में आ गया, यू विल बी हैप्पी। तो ठीक समझिए थोड़ा कि अनात्म तादात्म का भंग कर दो, वो भी नहीं कर सकता हूं। अच्छा, मोह निद्रा से उठ जाओ तो प्रबोध समय आ जाएगा। अब इसमें से कुछ नहीं कर सकते हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें से एक चीज तो करिए। देखो मैं क्या समझाता हूं, एक शब्द समझाता हूं, प्रबोध समय। तो प्रबोध समय यानी क्या, ज्ञान दशा के अंदर जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है वही साक्षात्कार का अधिकारी बनता है। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय। तो ज्ञान दशा के अंदर खड़े हो जाए, नंबर वन, नंबर टू प्रपंच का बाध कर दीजिए, नंबर तीन अविद्या का अंत ला दीजिए, नंबर चार अनात्म तादात्म्य को तोड़ दीजिए, और नंबर पांच है मोह निद्रा से उठ जाइए और जागृत में खड़े हो जाइए। जैसे नरसिंह जाग गया, जागिने जो तो शंकराचार्य की जागृति है, ज्ञाते तत्व कह संसार। अगर प्रबोध समय में जाग गए और आपके जीवन में प्रबोध समय ज्ञान काल आ चुका है तो क्या अनुभूति होगी? फिर तो एक ही अनुभूति हो सकती है कि मैं ही आत्मा हूं। इतना ही नहीं, आत्मा होते हुए मैं पूरे प्रपंच का अधिष्ठान हूं। अधिष्ठान हूं इसका मतलब क्या हो गया, पूरा दृश्य प्रपंच मेरे लिए क्या हो गया, आरोप हो गया, सुपर इम्पोजिशन। और थोपी हुई चीज कभी सत्य नहीं होती, ये कंक्लूजन आ जाता है। मैं अधिष्ठान हूं, मैं अभेद हूं और मैं अखंड हूं, ये तीन बात होती है साक्षात्कार में। तो अगर मैं अभेद हूं तो भेद कहां है, मेरे अलावा दूसरी चीज है ही नहीं, और दूसरी है ही नहीं तो भय किसका। द्वितीया द्वयी भयम भवति सूत्र है, दूसरी चीज है तो भय है। अगर भय भी नहीं है तो राग कहां होगा, और राग नहीं तो क्रोध कहां होगा। हम तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, क्यों समझ गया दूसरी चीज है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। तो मैं अपने ऊपर तो क्रोध नहीं कर सकता हूं, मैं अपने ऊपर राग भी नहीं कर सकता हूं, मैं अपने ऊपर द्वेष भी नहीं कर सकता हूं। तो समझिए साहब, साक्षात्कार करना मतलब क्या, मैं आत्मा ही नहीं, मैं ऐसा अधिष्ठान रूपी आत्मा हूं पूरे दृश्य प्रपंच का, इसलिए मैं अभेद हूं, मैं अखंड हूं। इसका मतलब हुआ मैं निराकार हूं। अब देखिए, इतना समझना पर्याप्त नहीं है, मैं अभेद हूं, अखंड हूं, अनामी हूं, फिर भी नाम में रहता हूं, प्रत्येक नाम मेरा है। ये समझाने के लिए पूरा विष्णु सहस्त्र नाम है। मैं सहस्त्र मतलब हजार नहीं, अनंत, ऐसा समझना है। तो सब नामी में मैं अनामी हूं, सब व्यक्तों में मैं अव्यक्त हूं, सब शरीरों में मैं अशरीरी हूं, सब रूप में मैं अरूपी हूं, और अंत में मैं निराकार हूं फिर भी बहुरूपी हूं। वाह वाह, देखो ये ड्रेस वाला बैठा है, सबको ड्रेस देता है और बहुरूपी बनाता है। हाँ, ये लोग ही रावण का ड्रेस भी देते हैं, राम का भी देते हैं, सूर्यप्रखा भी बना देते, सब बना देते। तो मैं कौन हूं, निराकार हूं मगर बहुरूपी हूं, अनेक रूपों में मैंने अनुभव अभिनय किया है, अभिनय सम्राट हूं मैं। अच्छा, तो देखिए साहब, ऐसा जब साक्षात्कार होता है तो आरोपित जगत का मिथ्यात्व तो समझने में आता है। कैसे, मंत्र में कहा स्वात्मानम एव अद्वयम, मैं अदृश्य हूं फिर भी सूत्रात्मा हूं, और सूत्रात्मा हूं इसलिए ही अदृश्य हूं। मेरे पास गुलाब के 1000 गुलाब के पुष्प हैं, तो आपको पुष्प तो दिखाई देंगे, कोई 1000 पुष्प हैं, 10,000 पुष्प ले लो गुलाब के, मगर गुलाब की खुशबू दिखाई देती है, तो क्या गुलाब में खुशबू नहीं है? है, मगर दिखाई नहीं देती है। मैं सूत्रात्मा हूं, सब में हूं, फिर भी अदृश्य हूं, अदृश्य हूं फिर भी सब में हूं, ऐसी अनुभूति होती है। स्वात्मानम एव अद्वम, निजव स्वरूप की परख हो जाती है। स्व आत्मा मतलब क्या? स्व आत्मा, अब समझो तत्वज्ञान। स्व आत्मा मतलब कि मेरा जो जीवात्मा है वो ही परब्रह्म परमात्मा है, दो अलग अलग नहीं है, ऐसी एक अनुभूति। स्व आत्मानम एव अद्वयम, मेरा जीवात्मा ही वो अद्वय अखंड अभेद परमात्मा है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा साक्षात्कार होता है। यह साक्षात गुरुदेव, मगर कब? प्रबोध समये, जब ज्ञान दशा के अंदर हम खड़े हो जाते हैं तब। ज्ञान दशा के अंदर खड़े होने के बाद क्या दिखाई देता, क्या समझ में आता है? अच्छा देखिए, क्या समझ में आता है? मैं तो अधिष्ठान हूं और जगत तो आरोप है। अब मैं आपको पूछता हूं, जगत जो अगर आरोप है तो जगत जड़ है या चेतन है? जगत कैसा है? अच्छा, जगत जड़ है, तो कोई जड़ चीज, सच बोलना है, आपको सुखी कर सकती है? कर सकती है? नहीं कर सकती ना? इतना सत्य समझो कि जड़ चीज मुझे सुखी नहीं कर सकती है। ये समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे कि जड़ चीज मुझे दुखी भी नहीं कर सकती। और हम सबकी यही कंप्लेन है, आई एम नॉट हैवी बिकॉज ऑफ हिम, आई एम नॉट हैवी बिकॉज ऑफ हर। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग माय डियर सर। मैं एड्रेस मेरा बदली करने वाला हूं, मेरा टेलीफोन बदली करने वाला हूं। अरे क्यों भाई, ये घर सत्ता नहीं है, ये दुकान में बरकत नहीं है। ये दुकान बरकत तेरे में होनी चाहिए कि दुकान में? लोग घर बदली करते हैं, लोग कार बदली करते हैं, व्हाट नॉट बदली करते, मैं नहीं कहना चाहता मगर वो बदली करने से कोई सुखी नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसको आप बदली करते हो वो तो जड़ है। पूरा जड़ जगत है वो आपको सुखी नहीं कर सकता है, तो जड़ जगत आपको दुखी कैसे कर सकता है? मगर ये समझ में कब आएगा? जब अपने को जगत का, प्रपंच का अधिष्ठान मानोगे तब। वो जगत जिसको मैं कहता हूं ये जगत से मैं सुखी हूं, जगत से मैं दुखी हूं, दैट इज सुपर इम्पोजिशन। ये तो आपके द्वारा थोपा हुआ है, जो चीज आपने थोपी है वो आपको सुखी भी नहीं कर सकती और वो आपको दुखी भी नहीं कर सकती। तो सुख दुख कैसे आया? जड़ जगत का दूसरा नाम क्या देंगे? असत देंगे ना भाई, असत है। या अनित्य भी दे सकते हो ना, मिथ्या भी तो कह सकते हो ना भाई। जो जगत जड़ है उसको मिथ्या नहीं कह सकते, असत कह सकते, अनित्य कह सकते। जो जगत असत्य है, मानते हो कि नहीं? जो जगत असत्य है वो सत्य सुख कैसे देगा? देगा नहीं, तो सत्य दुख भी नहीं देगा। तो सुख दुख आता कहां से? जड़ जगत नहीं देता है, आत्मा सुख दुख देता नहीं है, तो सुख दुख कहां से आता है? आता तो है ना भाई, सबने अनुभव किया है, तो कहां से आता है? खाली खाली गप सप मत मारो, और आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, इसलिए आप सिस्टमेटिक गप मार दे। तो देखिए, सुख दुख कहां से आता है? जो भी चीज सत्य नहीं है उसको सत्य मानते ही इतने नहीं, उसके साथ हम तादात्म्य करते हैं, तादात्म्य से ही सुख उत्पन्न होता है, तादात्म्य से ही दुख उत्पन्न होता है। 3 घंटे की सिनेमा देखते हो, विलन के साथ तादात्म्य करोगे तो दुखी हो जाओगे, और हीरो के साथ तादात्म्य करेंगे तो, क्योंकि हीरो तो वो नीचे गिरा है, विलन को मारता है तो मजा आती है, मगर जब विलन नीचे गिर जाता है, हैं, और हीरो मारता है तो मजा आती है, मगर हीरो नीचे गिरता है विलन मारता है तो मजा नहीं आती हमको। जो सिनेमा की बात करता हूं, सिनेमा के अंदर इंडियन सिनेमा में हमेशा ऐसा होगा आसमान में बहुत गहरे बादल आ जाएंगे, बादल गरजने लगेंगे, बारिश आ जाएगी और इतनी बारिश में वो पति है ना उसकी औरत को निकाल देता घर से बाहर और बारिश में भीगती भीगती जाती है। और वो स्त्री के साथ अगर आपने तादात्म्य किया तो आप कैसे हो जाओगे? दुखी। और वो बगीचे में घूमती है, नाचती कूदती, उसके साथ तादात्म्य करोगे तो आप तो देखिए सुखी और दुखी जगत से नहीं होते, आत्मा से नहीं होते। हम तादात्म्य से सुखी भी होते हैं, दुखी होते हैं। अब मैंने समझा दिया, अब मैं आपको फिर से पूछता हूं, दिस इज द टेस्ट जो वेदांत का श्रोता है उसकी, सुख दुखी कैसे होते हैं? जड़ जगत से, आत्मा से, किससे होते हैं? तादात्म्य से होते हैं। अरे मैंने समझाया ना अभी, कैसे होते हैं? तादात्म्य से। मूर्ख है तो समझ, गलत गलत क्यों सिखाया? सच्चा बताने के लिए। सिनेमा देखते हैं वो समय में हम जो पात्रों के साथ तादात्म्य करते हैं, वो पात्र दुखी है तो हम दुखी और सुखी है तो सुखी। देखो एक और चीज जोड़नी है, मात्र तादात्म्य से हम सुखी और दुखी नहीं होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपका बेड़ा पार होने वाला आज। सिनेमा देखते समय तादात्म्य तो हम करते हैं, मगर वो समय में स्क्रीन पर्दा है उसका अज्ञान होता है, पर्दे का अज्ञान होता है और तादात्म्य होता है, दो बातें। समझ में आती है? अगर वो समय में आपको हाँ ये तो पर्दा है, ये पर्दे के ऊपर प्रोजेक्शन है, वो मशीन के द्वारा प्रोजेक्टर के द्वारा, ये सत्य नहीं है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी तो पर्दा ही है। वो पर्दे का ज्ञान हो जाता तो सुख दुख नहीं होता। समझ में आती बात? तो क्या होता है, जब हम तादात्म्य करते हैं तब वो पात्रों को सत्य मानते हैं और पर्दे का अज्ञान होता है। पर्दा मतलब वो आत्मा अधिष्ठान जिसके ऊपर दृश्य प्रपंच आरोपित है। तो अब समझने का प्रयास कीजिए, मात्र ऐसा नहीं, तादात्म्य, तादात्म्य और अज्ञान दोनों चीज जब मिलती हैं तो सुख और दुख हैं वो हमें समझ में आते हैं। चलचित्र जो प्रक्षेपित हैं, जो चित्र हम देखते हैं, जो प्रेक्षक के सामने सत्य दिखाई देता है पात्रों का, वो सत्य तो दिखाई देता है जिसके साथ तादात्म्य करते हैं, मगर जो पर्दा है वो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य रहता है। ऐसे ही जीवात्मा को, आत्मा अंदर है अधिष्ठान, वो आत्मा अदृश्य रहता है और जीवात्मा भौतिक पदार्थों के साथ तादात्म्य करता है, इसलिए सुखी होता है, इसलिए ही दुखी होता है। अब बात समझ में आती है? ऐसे सुख दुख नहीं होता है, तादात्म्य और पर्दे का ज्ञान। जीवात्मा बाहरी पदार्थों को सत्य मानता है, उसके साथ तादात्म्य भी तो करता है, और आत्मा अदृश्य है, उसका ज्ञान उसको होता है, इसलिए हम सुखी भी होते हैं और दुखी होते हैं। और ये शरीर को जीवात्मा सत्य मानता है, शरीर को सत्य मानता है इतना नहीं, शरीर के विकारों को सत्य मानता है। मैं युवान था, मैं मध्य अवस्था में आया, पहले शादीशुदा नहीं था, अब शादी की, मैं तो सत्य हूं और जिसका संबंध जुड़ा वो भी सत्य है, ऐसा ऐसा मानता है ना, ऐसा मानता है, इसलिए सुखी दुखी होता है। नहीं मानेगा तो सुखी दुखी नहीं होगा। और जन्म ली जितनी चीजें सब साकार है, साकार है, ये सत्य है, ऐसी भ्रांति में जीवात्मा रहता है, इसलिए जीवात्मा सुखी और दुखी होता है। वंस अगेन, प्रबोध समय क्या है? आई एम चेंजिंग माई स्टैंड पॉइंट नाउ। प्रबोध समय, ज्ञान दशा क्या है? नंबर वन, प्रबोध समय का मतलब होता है ज्ञानामृत रूपी गुरु कृपा। गुरु कृपा मिलनी शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं प्रबोध समय। अज्ञान हरण के जैसा आचार्य का अनुग्रह होता है, वो अनुग्रह को कहते हैं प्रबोध समय। ईश्वर कृपारूपी प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं प्रबोध समय। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आए प्रसाद, कैसा प्रसाद? प्रसाद ए सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजाए थे। स्वामी में 100 दफा प्रसाद दिया है, अरे तू 1000 दफा प्रसाद देने मंदिरों में लाइन में खड़ा होकर कोई फायदा नहीं। प्रसाद तो कौन सा, भगवान कृष्ण ने कहा है ऐसा प्रसाद एक ही दफा जीवन में मिलना चाहिए। प्रसाद ए सर्व दुखा नाम, वो प्रसाद मिलेगा तो सर्व दुख की समाप्ति हो जाएगी। मगर हम तो आज प्रसाद लिया है तो भी कल तो दुख है, कल प्रसाद लिया तो परसों दुख है। प्रसाद क्या है समझते नहीं है। प्रसाद का नाम ही है प्रबोध समय। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय। प्रबोध समय का मतलब है ईश्वर का प्रसाद मिलना प्राप्त हो गया। और गीता में जो प्रसाद की बात की गई कौन सा, चित्त शुद्धि रूपी प्रसाद, सूक्ष्म बुद्धि रूपी प्रसाद। भगवान की इच्छा हो गई, सूक्ष्म बुद्धि हमको प्रदान कर दिया, और सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त हो गई तो साक्षात्कार होता है। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी एषु सर्वेषु भूतेषु गुरुत्मा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्र यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म बुद्धि होगी तो साक्षात्कार होगा, और ऐसा सूक्ष्म बुद्धि जब भगवान हमको दान में देता वो समय हमारे लिए प्रबोध समय कहा जाता है। क्या आगे बात करते हैं, श्रुति, श्रुति का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है उपनिषद का, मदर श्रुति कहते हैं, उपनिषद तो हमारी मां है। मेरी मां ने मुझे जन्म तो दिया साहब, मैं झूठ तो नहीं कहूंगा, मगर मेरी मां ने मुझे जन्म दिया और ये सृष्टि मिले मुझे मिली, मगर मदर श्रुति ने मुझे जन्म दिया और मुझे दृष्टि मिली। मेरी मां ने सृष्टि दिखाई, मगर उपनिषद है ये मेरी दूसरी मां है और जिसने मुझे दृष्टि दी, और वो दृष्टि के द्वारा ही मैं कह सकता हूं स्वात्मानम एव अद्वयम। तात्पर्य में प्रबोध समय याने क्या, प्रबोध समय यानी नंबर 1 गुरु कृपा, नंबर 2 अज्ञान हरण के जैसा आचार्य का अनुग्रह, नंबर 3 ईश्वर कृपा, नंबर 4 श्रुति का आशीर्वाद। ये सब मिलता है तो उसको कहते हैं प्रबोध समय। गुरु शास्त्र ईश्वर कृपा का समन्वय होना चाहिए। ऐसा समन्वय जिसके जीवन में हो गया ने उसको फिर त्रिवेणी घाट पर जाने की आवश्यकता नहीं। ये त्रिवेणी हृदय के भीतर बहती है। कौन सी त्रिवेणी, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, इसका समन्वय होना चाहिए और इसी का नाम है प्रबोध समय। प्रबोध समय ज्ञानी क्या अनुभव करता है, जगत को छोड़ देता है। क्यों, जगत का त्याग नहीं करेगा ज्ञानी? देखना साहब, ज्ञानी जैसे जगत को स्वीकार करेगा ऐसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। स्वामी जी मैंने तो सुना है कि आपने संन्यास लिया, आ लिया तो आपने घर बार मां बाप वो सब छोड़ दिया। नहीं छोड़ा है, एक घर को छोड़ के 1000 घर को मैंने अपनाया है। पहले एक ही घर में रहता था, आज जितने लोग बैठे उनके घरों में मैं निवास करता हूं, और जो नीचे जाता हूं, बहन जी कैसी हो, माता जी आप कैसी हो, एक बहन और एक मां को छोड़कर मैंने 1000 मां और माताओं को अपना लिया है। सन्यासी सबको अपनाता है, छोड़ता कुछ नहीं, ये बड़ी भ्रांति है। तो ज्ञान के संदर्भ में प्रबोध समय की बात करता हूं। जगत का स्वीकार करता है ज्ञानी, त्यागता नहीं है जी, मगर जगत को स्वप्नवत जान के उसका स्वीकार करता है। मैं अगर गलती से भी आपके घर में मेहमान हो गया तो मैं अपना वर्तन इस तरह से करता हूं कि मैं जब आपका घर छोड़ूंगा तो आपको ये लगना चाहिए कि स्वामी जी तो हमारे हैं। स्वामी जी का छोटा फोटो दे दो, मैं इधर रखूंगा, ये स्वामी जी तो हमारे, ये स्वामी जी तो हमारे। मगर स्वामी को स्वयं पता होना चाहिए मैं किसी का नहीं हूं। मगर सबको यह अनुभूति करानी चाहिए कि मैं उसका हूं। ज्ञानी सबका स्वीकार करता है, मगर कैसे, स्वप्नवत समझकर। ये जितने भी हैं स्वप्न के पात्र हैं, और स्वप्न के पात्र हैं ऐसा मानते हुए भी उसका उद्धार करना ज्ञानी का कर्तव्य बनता है। उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी उठाना है ऊपर। इसलिए तो संत लोग इतने पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वप्नवत समझ के जगत का स्वीकार करता है, इनकार नहीं करता है। अब समझना, जगत को स्वप्नवत मानना ही जगत का इनकार है। यानी क्या, सत्य तो नहीं मानना जगत को, जगत और जगत के सब पात्रों को क्या मानना है, असत्य मानना है, मिथ्या मानना है, आने जाने वाले मानना है, ऐसा मानकर उसका स्वीकार करना है। नंबर वन, प्रबोध समय में क्या होता है ये बताता हूं। नंबर टू, आत्मा से अन्य जो कुछ भी है उसमें से कोई सत्य नहीं है, ऐसी उसकी आंतर जागृति होती है, और आंतर जागृति के भीतर स्वयं के आत्मा को एक अखंड अद्वैत ब्रह्म तत्व जैसा अनुभव करता है। इसलिए श्लोक में आया, यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय, क्या साक्षात्कार करता है, स्वात्मानम एव अद्वयम, मैं ही अद्वय अद्वितीय आत्मा हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं है, और अगर कुछ है नहीं तो मुझे किसको ना ग्रहण करना है ना मुझे किसको छोड़ना है। मैं विश्व का अनअस्तित्व और आत्मा का शाश्वत अस्तित्व है उसका स्वीकार करता हूं। विश्व सत्य है ऐसा स्वीकार नहीं करता हूं, उसका अनस्तित्व का स्वीकार करता हूं, और आत्मा का शाश्वत अस्तित्व है उसका भी एक साथ में गर्जना घोषणा के साथ स्वीकार करता हूं। इसका नाम है प्रबोध समय। प्रबोध समय यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय। ये प्रबोध समय की अंतिम बात करके वाणी को विराम दूंगा। प्रबोध समय में क्या होता है, जीव सृष्टि और जीव भाव के जो फेरे हैं उमिट जाते हैं। प्रबोध समय में मैं जीव हूं ये तो भाव रहता नहीं है, मैं तो आत्मा बन गया। अगर ये समझ गया मैंने तो फिर मेरे लिए ऊर्ध्वगति कैसे, अधोगति कैसे, आवागमन के फेरे कैसे। तो प्रबोध समय का ये फल है। और कहते हैं जीव की जन्माई हुई सृष्टि नहीं बचती है। अच्छा, जीव ने क्या उत्पन्न किया, किया उसको एक एक सृष्टि है वो जीव सृष्टि, दूसरी सृष्टि उसका नाम ईश्वर सृष्टि। ये सामने पेड़ है, सूर्य है, चंद्र है, ये दरिया है, सागर है, नदी है, ये सब क्या ईश्वर की सृष्टि। वो आपको लड़ती नहीं, वो आपको अड़ती भी नहीं, ईश्वर की सृष्टि है ना, ये कभी बंधन नहीं करती है। बंधन कौन से करती है, जीव की सृष्टि। तो जीव ने क्या बनाया, मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी दुकान है, अच्छा मेरे चाचा है, भतीजा है, ताऊ जी है, अरे ये सब जीव सृष्टि हैं, और ये जीव सृष्टि ही बंधन कारक है। तो प्रबोध समय में क्या होता है, जीव के द्वारा जन्माई हुई जो जीव सृष्टि है, स्नेह सृष्टि है, वो समाप्त हो जाती है। फिर जागृत की ईश्वर रचित बाह्य सृष्टि ज्ञान से नहीं रहती है, और जीव सृष्टि भी जीव को ही खत्म करने से, जीव भाव का बाध करने से जीव सृष्टि वहां बचती नहीं। जीव नहीं तो उसकी सृष्टि भी नहीं हो सकती है। तो क्या होता है कि शरीर भाव से जन्म नहीं होता है, जीव भाव से सदगति दुर्गति नहीं होती, किसको, जो जाग गया है। प्रबोध समय ज्ञान में जो जाग गया है उसके लिए कोई चीज का जन्म नहीं, जीव का जन्म नहीं, जगत का जन्म नहीं, ईश्वर का जन्म नहीं, और आत्मा तो अजन्मा है ही। ऐसा कब पता चलता है, प्रबोध समय। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा, यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम्। और ऐसा प्रबोध समय जिसके जीवन में आता है वो किसकी, सद्गुरु की कृपा से आता है। इसलिए कहा गया तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये, तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। अस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।